यरमिया अध्याय 20, यरमिया अध्याय 20 पद 1। पशूर, पशूर का अर्थ है समृद्धि ही समृद्धि, सर्वत्र समृद्धि। यरमिया अध्याय 20 पद 1 और 2। जब यरमिया ये भविष्यवाणी कर रहा था, तब इमेर के पुत्र पशूर ने, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वो सब सुना। सो पशूर ने यरमिया भविष्यद् वक्ता को मारा और उसे उस काठ में डाल दिया जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामिन के फाटक के पास है। यरमिया को पशूर ने मारा पीटा और काल कोटरी में डाल दिया। इस व्यक्ति का नाम का अर्थ है चारों ओर समृद्धि। यरमिया अध्याय 20 पद 3। बिहान को जब पशूर ने यरमिया को काट में से निकलवाया, तब यरमिया ने उससे कहा, यहोवा ने तेरा नाम पशूर नहीं मागोर मिशहाबिब रखा है। यहोवा ने उसका नाम परिवर्तित करके मागोर मिशहाबिब रख दिया, अर्थात चारों ओर भय ही भय। यरमिया अध्याय 20 पद 4 और 5। क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है, देख मैं तुझे तेरे लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहराऊंगा। वे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे और मैं सब यहूदियों को बाबुल के राजा के वश में कर दूंगा। वो उनको बंधुआ करके बाबुल में ले जाएगा और तलवार से मार डालेगा। फिर मैं इस नगर के सारे धन को और इसमें की कमाई और सब अनमोल वस्तुओं को और यहूदा के राजाओं का जितना रखा हुआ धन है, उस सब को उनके शत्रुओं के वश में कर दूंगा और वे उसको लूट कर अपना कर लेंगे और बाबुल में ले जाएंगे। यरमिया काठ में बंदी होने के बाद भी चुप नहीं रहा। उसने पशूर को भी परमेश्वर का संदेश सुनाया कि चारों ओर भय ही भय छा जाएगा। वो अपने मित्रों के साथ बंदी बनाकर ले जाया जाएगा और बाबुल का राजा यहूदा का सारा खजाना लूटकर ले जाएगा। यरमिया अध्याय 20 पद 6। और हे पशूर, तू उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं बंधुआई में चला जाएगा। अपने उन मित्रों समेत जिनसे तूने झूठी भविष्यवाणी की, तू बाबुल में जाएगा और वही मरेगा, और वही तुझे और उन्हें भी मिट्टी दी जाएगी। यरमिया परमेश्वर को पुकारता है। यरमिया अध्याय 20 पद 7 और 8। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी होती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूं तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूं कि उपद्रव और उत्पात हुआ, हां उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और टट्ठा का कारण होता रहता है। पशूर को संदेश देने के बाद वो परमेश्वर से कहता है, प्रभु देख, मैं तो उन्हें उनका भविष्य बता रहा हूं और उन्होंने मुझे बंदीगृह में डाल दिया। तेरे नाम से भविष्यवाणी करने के कारण मुझे काल कोटरी में डाल दिया गया। ये सब क्या हो रहा है? क्या तेरे सेवकों और भविष्यद् वक्ताओं के साथ व्यवहार करने का यही तरीका है? वो अब अत्यधिक नाराज है। यरमिया अध्याय 20 पद 9। यदि मैं कहूं, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, प्रभु मेरा काम पूरा हुआ, ये मेरा त्याग पत्र है, क्योंकि तेरे नाम में संदेश सुनाने के लिए मुझे बंदी बनाया जाता है और काल कोटरी में डाल दिया जाता है, क्योंकि मैं तेरा वचन लाता हूं। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, मेरे लिए तो बस बहुत हुआ, जो मैंने कर दिया वही बहुत है। अब मैं तेरे नाम में संदेश नहीं दूंगा, मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार, यरमिया अध्याय 20 पद 9 में आगे लिखा है, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं जाता। ओह, परमेश्वर का वचन दहकती हुई आग है, मैं चुप रह भी तो नहीं सकता, वो तो ऐसा है कि हटता ही नहीं, उसका वचन तो दहकती हुई आग है, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूं। यरमिया अध्याय 20 पद 10 और 11, मैंने बहुतों के मुंह से अपना अपवाद सुना है, चारों ओर भय ही भय है, मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोते हैं, वे कहते हैं उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे, कदाचित वो धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वो भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे, वे तो प्रतीक्षा करते हैं कि मैं ठोकर खाऊं, परंतु वे ठोकर खाएंगे, क्योंकि मेरे साथ तो यहोवा है। यरमिया अध्याय 20 पद 11 से लेकर 13 तक, वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा, उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वो दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। यरमिया पुनः यहोवा की आराधना में लीन होता है और अपने षड्यंत्रकारियों के लिए वो यहोवा से शिकायत करता है। परमेश्वर उससे कहता है, मैं यहोवा मन को परखता और हृदय को जांचता हूं। अतः वो कहता है, तो प्रभु ठीक है, तू मन को खोज और हृदय को जांच और इनका विनाश कर, क्योंकि तू तो देख रहा है कि वे क्या कर रहे हैं, वे दुराचारी है, मैं उनसे तेरा बदला लेना देखना चाहता हूं। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वो दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। जैसा मैं आपसे कह चुका हूं कि यरमिया एक शोकित व्यक्ति था, प्रभु की स्तुति हो, इस स्थिति से वो संपूर्ण रूप से उभर चुका है। यरमिया अध्याय 20 पद 14 से लेकर 17 तक, श्रापित हो वो दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया वो धन्य ना हो, श्रापित हो वो जन जिसने मेरे पिता को ये समाचार देकर उसको बहुत आनंदित किया कि तेरा लड़का उत्पन्न हुआ है, उस जन की दशा उन नगरों की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन दया ढा दिया, उसे सवेरे तो चिल्लाहट और दोपहर को युद्ध की ललकार सुनाई दिया करे, क्योंकि उसने मुझे गर्भ ही में ना मार डाला कि मेरी माता का गर्भाशय ही मेरी कब्र होती और मैं उसी में सदा पड़ा रहता। दूसरे शब्दों में यरमिया का विलाप ये है कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ कि मुझे ये उत्तरदायित्व निभाना पड़ रहा है, या तो मैं अब भी माता के गर्भ में रहता, या यदि जन्म लेता तो मृतक शिशु होता, या जन्म लेते ही मर जाता। यरमिया अध्याय 20 पद 18, मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिए जन्मा कि अपने जीवन में परिश्रम और दुख देखूं और अपने दिन नाम धराई में व्यतीत करूं। ये एक अद्भुत बात है कि हम इस ऊंचाई से यहोवा की स्तुति करो, उसने अद्भुत काम किए हैं, कैसे उस अवस्था में जा सकते हैं कि कहें श्रापित है वो दिन जब मेरा जन्म हुआ। देखिए शैतान कितनी आसानी से हमारा आनंद लूट कर ले जाता है, कितने कम समय में हमारा प्रभु में आनंद समाप्त हो जाता है। मैं प्रभु के उपकारों को सोचते सोचते ऊंचाई में स्तुति करने लगता हूं, मैं उसकी भलाई और आशीषों का स्मरण करने लगता हूं, मैं प्रभु में आनंद मनाने लगता हूं, मैं स्तुति गान करने लगता हूं और मेरे मन से स्तुति और प्रेम का संगीत प्रवाहित होने लगता है, परंतु तुरंत ही मैं भटक जाता हूं। ओ प्रभु, तू कितना भला है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, यह कितना सच है। प्रभु, मुझे विश्वास नहीं होता कि तू क्या कर रहा है। मैं प्रभु में और प्रभु की सराहने में उत्साहित होने लगता हूं और मेरा आना जाना कैसा प्रफुल्लित समय होता है। प्रभु की स्तुति करता रहता हूं और तभी एक मूर्ख मेरे सामने अकस्मात ब्रेक मार देता है और मुझे ब्रेक लगाकर तुरंत ही चक्कर काटना पड़ता है कि उससे बचूं। नालायक, और हमारी आत्मिक ऊंचाइयों से कितना शीघ्र ही हम किसी न किसी कारणवश निराशा की गहराई में डूब जाते हैं। यरमिया भी अकस्मात ही परमेश्वर की स्तुति से मुंह फेर लेता है। श्रापित है वो दिन जब मेरा जन्म हुआ, और उदास हो जाता है। सावधान, शैतान को अपना आनंद लूटने मत दो। सदा स्मरण रखो कि वो इस काम में तत्पर है। चौकस रहो, यहोवा में सदैव आनंदित रहो, आपका मन उसमें आनंदित रहे। उसकी भलाई और उसकी आशीषों के लिए, उसकी करुणा और उसके अनुग्रह के लिए उसकी स्तुति करते रहो। यदि शैतान आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे कि आपको देहिक अवज्ञा में लाए, तो उसे अनुमति मत दो। कुछ समय पहले मैं अति आनंदित हो बाजार में से जा रहा था। मैं प्रभु में आनंदित था कि वो कितना भला है, उसने मुझे कितनी आशीष दी है। मैंने वसा रहित मांस खरीदा था और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ जा रहा था कि प्रभु ने मुझे ये सामान खरीदने के लिए पैसा दिया, अन्यथा मैं तो इस लायक नहीं था कि उसे खरीद पाता। अब मैं जब घर पहुंचूंगा तब उसे पकाऊंगा। प्रभु, वो दिन भी था जब मैं इसे खरीदने में सामर्थ्य नहीं था, परंतु आज प्रभु मुझे तेरी आशीष प्राप्त है। हे प्रभु, तू मेरे साथ कैसी भलाई करता है। इस प्रकार मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हुआ दुकान में से निकलकर आगे बढ़ रहा था और आनंद पूर्वक प्रभु की स्तुति कर रहा था। मैं काउंटर पर आकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर ही रहा था और प्रभु का गुणगान कर रहा था, ओ प्रभु तू कितना भला है। तभी एक मोटा आदमी सिगार पीता हुआ मेरे आगे नियम के विरुद्ध जबरदस्ती पंक्ति में खड़ा हो गया। मैंने सोचा, तू अभद्र व्यक्ति। मेरे मन में आया कि उसका गिरेबान पकड़कर उसे वहां से धकेल कर कहूं, तू अपने आप को क्या समझता है, तू देखता नहीं कि मैं पंक्ति में तुझसे पहले खड़ा प्रतीक्षा कर रहा हूं, मेरे पीछे खड़े हो जा। और उसका वो सिगार मैं उसके मुंह में ही ठूस देना चाहता था। मैं अंदर ही अंदर उबल रहा था कि पवित्र आत्मा मुझसे बोला, ओह ऐसा असीम प्रेम, ऐसा महान आनंद, प्रभु में उल्लास केवल एक सिगार के कारण समाप्त हो गया। तब मैंने कहा, नहीं, कदापि नहीं, मैं इस अभद्र मनुष्य के कारण अपना आनंद खोना नहीं चाहता। मैंने सोचा कि मैं दुकान का एक और चक्कर लगाता हूं। मुझे कुछ खरीदना तो था नहीं, परंतु अपने चित्त को शांत करने के लिए और उस व्यक्ति के चले जाने की प्रतीक्षा के लिए मैंने ऐसा किया। तदोपरांत मैं पुनः काउंटर पर आया। मैं अपनी सीमा जानता हूं और ये भी जानता हूं कि मेरी बर्दाश्त करने की क्षमता क्या है, परंतु कुछ एक गैलरियों में निकलते हुए और प्रभु में अपना दृष्टिकोण पुनः स्थापित करते हुए मैं फिर से काउंटर पर आया। अब वो व्यक्ति जा चुका था, मैं विजयी हुआ और मैं अपना मांस का सौदा लेकर स्तुति करता हुआ लौटा। परंतु ध्यान दीजिए कि प्रभु में आनंद और स्तुति गान से वंचित हो जाना कितना आसान है। शैतान फंदा डालता है और बड़ी आसानी से हम फंस जाते हैं। परमेश्वर का बोध और आनंद एवं उल्लास समाप्त हो जाता है और हम में क्रोध और कटुता समा जाती है। वो जानता है कि हम पर कहां वार करें, वो जानता है कि हमें कैसे काबू करें, परंतु हम उसे ऐसा ना करने दें। हम अपनी दृष्टि यथोचित रखें। उस महान आनंद एवं स्तुति वो उल्लास को बनाए रखने के लिए हम उस स्थिति से हटकर पूर्व अवस्था में एक बार और विचरण कर ले। बेचारा यरमिया, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा, यहोवा की स्तुति हो कि उसने दरिद्र के प्राण का उद्धार किया है। श्रापित है वो दिन जब मेरा जन्म हुआ। मैं नहीं जानता कि इन दो पदों के बीच उसके साथ क्या हुआ, परंतु मैं निश्चय ये जानता हूं कि कुछ तो ऐसा हुआ कि उसका दिल टूट गया और उसे तल तक मगन कर दिया। आइए हम प्रार्थना करें। उस आशा का विचार करते हुए हम मसीह यीशु में जिस आनंद का अनुभव करते हैं, पिता हम उसके लिए तेरे आभारी हैं। वो अनंत जीवन जो तूने उस पर केवल विश्वास और आस्था रखने से हमें प्रदान किया है, वो उत्तराधिकार जो अविनाशी और परिशुद्ध है, तूने हमारे लिए स्वर्ग में आरक्षित रखा है। तेरा संरक्षक सामर्थ्य जिसके द्वारा तू दिन प्रतिदिन हमारी रक्षा करता है और हमें बल प्रदान करता है। हे प्रभु, हम सच में आशीषित हैं, इस देश में रहने के लिए आशीषित हैं, तेरी आराधना के लिए आशीषित हैं, तेरे वचन से आशीषित है कि तुझे जाने, पृथ्वी की समस्त जातियों में सर्वाधिक आशीषित है। हे परमेश्वर, हमें आशीषें गिनना सिखा, उन सब उपकारों को जो तूने किए हैं, और हम तुझे तेरी भलाई के लिए स्तुति और आराधना निरंतर चढ़ाएं। हे परमेश्वर, हमारे मन को सही स्थान पर दृढ़ रख, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपके साथ हो, आपको आशीष दे, वो आपके जीवन की रक्षा करे और आपको अपने प्रेम में थामे रहे। आप मसीह यीशु के प्रेम में बढ़ते जाएं। जो जो परमेश्वर आपके जीवन में अपने प्रेम और अनुग्रह के सिद्ध काम को करता जाए, त्यों त्यों आपके जीवन में समृद्धि प्रवाहित होती जाए। प्रभु आपको अपनी परिपूर्णता और प्रेम और उपकारों का आनंद लेने का विशेष समय प्रदान करें, यीशु के नाम में।